धवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धादद्धट्टमला विशुद्ध बुद्धिये लत्थ सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भंडारया सर्वे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अभी अपना चौथा खंड शुरू हुआ है, उसका नाम है वेदना खंड। और उस वेदना खंड में कृति अनुयोग द्वार, प्राकृत में उसको कदी अनुयोगत दारम कहा है। अब इस नवे पुस्तक के पृष्ठ संख्या हम 7 पर आए थे, पर जरा वो 6 नंबर की जो निक्षेपों की बात है वो अभी शोभाबेन ने पूछा है, वो फिर से दोबारा जरा समझाना। किसी भी विषय पर हम निक्षेप लगाते हैं तो नए तो ज्ञान के भेद है, ज्ञान में होते हैं नए, और निक्षेप पदार्थ में होते हैं। निक्षेप इन्हें रखना, क्या रखना, स्थापना तो एक निक्षेप का नाम है, रखना इन्हें हमने नाम रखा तो निक्षेप किया, क्योंकि व्यवहार के लिए ने किसी का बोलना है किसी वस्तु के बारे में तो हम ऐसा नहीं कि वह आया था या वह किधर है, वह किधर क्या है, तो वस्तु का नाम लेना पड़ता है ना। वह है ने क्या पुस्तक की बात करते हैं, कि वो है ने पेन की बात कर रहे हैं कि पैसे की बात कर रहे हैं, तो वस्तु को कुछ नाम रखा जाता है। वैसे ही बच्चों के भी हम नाम रखते हैं, किसी आदमी के नाम रखते हैं, वो है नाम स्थापना, नाम निक्षेप। फिर से निक्षेप 4 प्रकार के मुख्य बताए जाते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। 6 नंबर के पेज पर नीचे का पैराग्राफ, हाँ कहीं कहीं उसमें क्षेत्र और काल भी ले लेते तो 6 निक्षेप बनते, परंतु 4 निक्षेप तो सर्वत्र ही लेते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। अभी हमने सूत्र कौन सा पढ़ा था कि नमो जिनाणम, जिन कह दिया, तो ये जिन शब्द में ये कौन कौन से निक्षेप लगेंगे, तो जिन किस अपेक्षा से जिन हो सकते हैं, तो नाम निक्षेप है, नाम रखा किसी का जिन, तो हम उसको जिन नाम से पुकारते हैं, बच्चा है या जो कोई है, तो हो गया नाम निक्षेप। वहाँ कोई वो जिनेंद्र भगवान के उसमें गुण होने चाहिए कोई बात नहीं है, किसी का भी नाम हम जिन रख सकते हैं। फिर स्थापना निक्षेप में क्या होता है कि किसी एक चीज में किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे जिनेंद्र जैसे, उसमें भी 2 भेद होते, एक तदाकार और एक अतदाकार। तदाकार को सद्भाव कहते हैं, सद्भाव स्थापना, और अतदाकार को असद्भाव स्थापना कहते हैं। तो जैसे जिन प्रतिमा जो है, तो जिनेंद्र भगवान जैसी बनाते हैं और उसमें वो संगमरमर की या अन्य धातु की वगैरह बनाते हैं, और उसमें विधि पूर्वक जिसको कहेंगे ना मंत्रोच्चार पूर्वक, उसमें हम स्थापना कहते कि ये हमारे शांतिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, जो कोई है, तो वहां कहेंगे स्थापना जिन। यानी अगर स्थापना महावीर कहेंगे, अगर जिनेंद्र भगवान इतनी स्थापना करनी है तो हम उसको स्थापना जिन कहेंगे। अतदाकार में क्या है कि उनके आकार की तो नहीं है, परंतु कहीं वो तो स्थापना है ना, वो ठौना है ना, वो स्थापना नाम का वो ऐसे आकार का पात्र बनाते हैं और उस पर हमने कोई अक्षत या लौंग रख कर ये जिनेंद्र भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यह हम लौकिक में भी देखते हैं, जैसे शतरंज के जो खेल है उसमें ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये वहाँ तो अतदाकर स्थापना हो गई। हाँ, शादी में भी होता है ना, पहले के जमाने में होता था तलवार, वो तो तलवार के साथ शादी हो गई। यहाँ भी पत्नी नहीं आ सकती किसी विधान में, तो वहाँ उसकी सुपारी उसके जगह रखी जा सकती है। ये सद्भाव असद्भाव के जो उदाहरण, असद्भाव के उदाहरण बताए, ये निक्षेप से उसको कह देते हैं। आजकल तो इस पर भी हो रहे हैं ना, अभी इंटरनेट पर वो क्या है, ऐसा ही है, स्क्रीन पर वो आता है तो उसको स्थापना कर दी उस पिक्चर में उन्होंने। अब जिन भगवान के आकार रूप से वो हो गया, स्थापना हो गई। अब तीसरा जो निक्षेप है उसका नाम है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप से मूल में दो भेद है, आप लिखना शोभा। ये धवला पुस्तक एक में भी अपनी बात हुई थी, फिर दोबारा ले रहे कि एक बार जो हमने द्रव्य निक्षेप के दो भेद, और द्रव्य निक्षेप कौन से शब्द पर लगा रहे, तो जिन शब्द पर लगा। तो द्रव्य निक्षेप से जिन किसको कहेंगे, तो एक बाजू हम कहेंगे आगम द्रव्य जिन, और एक बाजू लिखेंगे नो आगम द्रव्य जिन। आगम द्रव्य जिन किसको कहेंगे, यानी आगम द्रव्य अपेक्षा से उसको जीव जिन कहा, किसको, कि जिन संबंधी जो प्रावृत है, आगम है, उसको जानने वाले जीव को। परंतु द्रव्य निक्षेप का ही अर्थ है वर्तमान में उस रूप नहीं, वो पर्याय उसके अन्य है, पर द्रव्य वही होने से उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। यानी भूत या भविष्य की पर्याय को वर्तमान में उपचार करके द्रव्य वही होने से वो द्रव्य निक्षेप में आ जाती है बात। ये जो सारे द्रव्य निक्षेप के जो भेद है उसमें यही लगाना है, किसी के भविष्य काल में परिणत होने वाला है, कोई भूतकाल में परिणत था उसका, कहीं उसके शरीर को भी कह दिया। यहाँ तो आगम द्रव्य निक्षेप, यानी आगम द्रव्य जिन किसको कहना, तो जिन प्रावृत के जानकार जो है उसके अभ्यासी है, परंतु उसमें अनुपयुक्त है, उनका उपयोग अभी अन्यत्र लगा है। वो प्रावृत के जानकार है, अभी पूजा कर रहे, हो सकता है कि वो कोई किसी से बात कर रहे, कोई अन्य संबंधी चर्चा चल रही उसकी, तो उसको क्या कहेंगे, आगम द्रव्य जिन। नो आगम द्रव्य जिन के भेद किए है, नो आगम यानी नहीं जानने वाले, यानी जिन प्रावृत को नहीं जानने वाले। तो नहीं जानने वाले तीन प्रकार से बताए हैं, एक तो जानकार जीव का शरीर जो नहीं जान रहा है, एक तो जीव ही है परंतु अभी तक नहीं जान रहा है, भविष्य में जानने वाला है, और तीसरी बात है इनके, इनको छोड़कर ना जीव ना शरीर, इनको छोड़कर जो अन्य बातें हैं उसको तद व्यतिरिक्त कहते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो शरीर को लिया, शरीर का नाम है यानी उसको ज्ञायक शरीर कहा, शरीर ज्ञायक नहीं है, पर जानने वाले जीव का शरीर, ज्ञायक का शरीर, उसको ज्ञायक शरीर कहा। तो ये ज्ञायक का शरीर किसको कहेंगे, तो अभी जो वर्तमान में ज्ञायक है उसके भूतकाल का शरीर उसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम, भूत ज्ञायक शरीर, अतीत या भूत ज्ञायक शरीर कहेंगे। और वर्तमान में जो है उसको कहेंगे वर्तमान, यहाँ वो समुज्जित कहा था उसको, यहाँ शब्द आया था 7 नंबर के पेज पर पहले लाइन में, समुज्जित यानी छोड़ा हुआ, यानी वो तो जो लास्ट भव की बात है। और भव्य या भावी जो कहेंगे, भावी शरीर की बात है, यानी जीव तो अभी है परंतु इस मनुष्य भव के बाद वो जो भव धारण करेगा उस शरीर को भी यहाँ ज्ञायक शरीर, कौन सा, भूत ज्ञायक शरीर, द्रव्य जिन, द्रव्य नो आगम जिन, इतना लंबा चौड़ा कहना पड़ेगा। अब ये हो गया ज्ञायक शरीर की बात। दूसरा जो भेद था किसका, नो आगम का, उसको भव्य या भावी कहते हैं, वो जीव की बात है, कैसा जीव है, वर्तमान में उस प्रावृत को नहीं जान रहा है, आगम को नहीं जान रहा है, पर वो भविष्य में जानेगा, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के तो ज्ञान में आ गया है, किसी अवधि ज्ञानी के ज्ञान में आया कि भविष्य में जानने वाला है, तो उसको क्या कहेंगे, भव्य नो आगम द्रव्य जिन। तीसरा भेद है जो नौ आगम का, उसका नाम है तद व्यतिरिक्त। तो तद व्यतिरिक्त की बात है, तो तद व्यतिरिक्त में सातवें पृष्ठ पर वो नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है, समाधान के सेकंड पैराग्राफ, नहीं उसमें नहीं, देखो ज्ञायक शरीर का भी एक है भावी या भव्य, और जो जीव के लिए भी भव्य शब्द है, दो जगह भव्य शब्द आता है। ज्ञायक शरीर में भव्य किसको लेना, वो भावी, वहाँ एक्चुअली भावी शब्द आता है, भावी यानी भविष्य काल में जो ज्ञायक शरीर होगा उसको लेना, यानी वर्तमान में ज्ञायक है पर उसका शरीर भविष्य वाला लेना है। जीव तो वही का वही है, तो जीव ने वर्तमान का शरीर छोड़कर भविष्य में जो शरीर वो धारण करेगा उस शरीर को भी कहेंगे। यानी अभी कोई मुनिराज है, ये आगम के जिन्ह प्रावृत के जानकार है, और वो वहाँ से देव में चले गए, तो देव का जो शरीर है उसको भी क्या कहेंगे, भावी ज्ञायक शरीर, यानी वर्तमान में उसको भावी कहेंगे, भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य जिन, इतना लंबा चौड़ा कहेंगे। हाँ, ज्ञायक शरीर का वो भावी भेद है, और ये दूसरा, हाँ, और दूसरा, हाँ वो उसमें जीव को लेना, हाँ, जीव को लेना वो दूसरा भेद था, और ये ज्ञायक शरीर के तीन भेदों में से एक भेद लिया। अब उसमें भी भूत जो है ना, उसमें भी, और यहाँ नहीं लिखा है, परंतु उसमें भी वो भूत शरीर कैसा छोड़ा है उसने, त्यक्त च्युत चावित और त्यक्त, च्युते ने अपने आप उसका जो मरण प्राप्त हुआ या छोड़ा हुआ जो संन्यास धारण कर से या कदली घात से, इस तरह से उसके तीन भेद होते, उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे अभी हम। अभी तो हमको देखना है कि तद व्यतिरिक्त क्या होता है। ये सातवें पृष्ठ पर नीचे से दूसरा जो चौथी पांचवी लाइन देखो, तद व्यतिरिक्त द्रव्य जिन। अभी जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विजेता, जिन्हें जीत लिया है उसको जिन कहते हैं। तो क्या जीत लिया है उसने, तो उसके तीन भेद हैं, सचित्त अचित्त और तदुभय। तदुभय ने दोनों, ऊंट घोड़ा हाथी यों के विजेता सचित्त द्रव्य जिन है, यानी उन्होंने इनको जीत लिया है, वो सचित्त हो गया। अभी इसमें केवल ऊंट घोड़ा हाथी बताया, उस सैनिक को भी जीत लिया ऐसा उसको, उसको भी आता है, उसमें कुछ भी हो सकते हैं। अभी उसने ने और क्या जीत लिया, तो हिरण्य सुवर्ण मणि मोती आदि कों के विजेता अचित्त द्रव्य जिन है, यानी उसने वो जीत लिया उससे, और सुवर्ण सहित कन्यादिकों के विजेता, यानी वहां कन्या नहीं कहा, कन्यादिकों के विजेता कहेंगे तो सचित्त में जाएगा, सुवर्ण सहित कन्या वो उभय में चला जाएगा, उसको सचित्ता चित्त कहते हैं, उसी को उभय कहेंगे। द्रव्य जिन है, यहां तक समझ में आई बात। ये द्रव्य निक्षेप के हमने भेद किए, आगम और नो आगम, नो आगम में तीन भेद किए, ज्ञायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त, ये तद व्यतिरिक्त के तीन भेद किए, सचित्त अचित्त और तदुभय। अब आगे बढ़ते हैं, अब भाव निक्षेप की बात करेंगे। द्रव्य निक्षेप में द्रव्य वही है परंतु उसके पर्याय आगे पीछे होती है, और सबको भी वर्तमान में उसका उपचार किया जाता है, यानी वो द्रव्य में वो रखा जाता है, उसको जानने वाला वो नए वो अलग बात है, उसको नयगम नए कहेंगे, आगे पीछे को उस समय भूत नयगम नए, भावी नयगम नए, उसके नाम अलग है, वो नयों के नाम हो जाएंगे, यहाँ निक्षेपों की बात हो रही है। अब भाव निक्षेप में क्या लेना है, कि उस पर्याय रूप से परिणत जीव लेना, वो भाव निक्षेप में आ जाएगा, और उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो एवं भूत नये में चला जाएगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर आगम और नो आगम के भेद से भाव जिन दो प्रकार के, जैसे द्रव्य जिन के दो भेद किए आगम और नो आगम, वैसे यहाँ पर भी आगम और नो आगम के दो भेद करना। आगम किसको कहना, अभी द्रव्य निक्षेप में भी आगम कहा था, तो आगम का जाननार और उपयोग उसमें नहीं था, अभी आगम का जाननार उसी में उपयोग है, ऐसा लेना। तो जिन प्रावृत का जानकार, पेज नंबर 8 पर आना, उपयुक्त जीव, यानी उसमें उपयुक्त उपयोग उसी में है जिन प्रावृत में ही जिसका उपयोग चल रहा है, यानी जानकार भी और उसी में उपयुक्त है। उपयुक्त का अर्थ होते उसमें उपयोग वाला, उपयोग उसमें लगा है। हम वर्तमान यानी लौकिक में कहते हमारे उपयोगी चीज़ें उपयुक्त है, वो बात नहीं है। ये आगम भाव जिन है, नो आगम भाव जिन किसको कहना,
ये संस्कार रूप जो ज्ञान चलता है।
हाँ, संस्कार रूप जो ज्ञान है
उसको भी इसमें गिना जाएगा,
उसमें
जो जानकार है और उसका संस्कार चलता है।
पर संस्कार नहीं, संस्कार और उपयोग दो भिन्न चीजें हैं। इसीलिए अगर संस्कार चलता है तो वो द्रव्य निक्षेप क्यों कहा उसको? उपयोग जुदी बात है और वहां जो संस्कार जुदी बात है। संस्कार में पड़ी हुई सारी चीजें उपयोग में नहीं है। उपयोग जब वो मेमोरी में हम लाएंगे, उसमें जब हम उसको याद करेंगे तो उसको उपयोग कहेंगे। ख्याल में एक बार, जैसे अभी हम पढ़ रहे वो अभी कृति अनुयोग द्वार पढ़ रहे, तो जीव कांड का कर्म कांड का आपको ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, उपयोग किस में चल रहा है? उपयोग अभी यहाँ चल रहा है, अभी वेदना खंड में चल रहा है, तो उसको द्रव्य निक्षेप से वहां लगाएंगे। और अगर आप कृति अनुयोग द्वार पढ़ रहे हैं और इसी में उपयोग है तो इसके बारे में कहेंगे। तो ये पेज नंबर 8 पर आ गए हम। कल भाव, भाव आगम है, भाव आगम द्रव्य, जैसे द्रव्य सॉरी द्रव्य निक्षेप के हमने भेद किए आगम नो आगम, भाव निक्षेप के भी दो भेद करना, आगम और नो आगम। पूरा अभी वो द्रव्य निक्षेप हो गए सारे, सब खत्म हो गए। अब भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप में वर्तमान में उस पर्याय रूप से नहीं है, आगे पीछे है, और भाव निक्षेप में वर्तमान में उस पर्याय रूप से है। तो आगम यानी जानकार भी है और उसमें उपयुक्त भी है, यानी उपयोग उसमें लगा है, वो क्या कहेंगे? आगम भाव जिन। अभी नो आगम भाव जिन उपयुक्त और तत्परिणत के भेद से दो प्रकार के हैं, यानी नो आगम में भी उन्होंने उपयोग वाला लिया और तत्परिणत उस रूप परिणत जीव लिया, यानी यहां वो तद्व्यतिरिक्त वाली बात नहीं, तत्परिणत हुआ कहना, क्योंकि उस रूप से परिणाम, क्योंकि यहाँ पर्याय में उस वर्तमान में है उस रूप, ये बात यहाँ लेना है। पहले तो आगम के जानने वाले को भी जिन कह दिया, वह तो आगम का जानकार था, अब ये डायरेक्ट जो जिनेन्द्र हुए हैं उनकी बात है। तो क्या कहते, जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत, यानी जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को ज्ञान में जिसने निश्चय किया उस ज्ञान की बात है, और वो जीव, जीव उस ज्ञान से परिणत है, वो उसको उपयुक्त भाव जिन कहेंगे, यानी उपयोग में वो जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप उन्होंने न किया, वो तो उपयुक्त भाव जिन। और जिन पर्याय से परिणत जीव तत्परिणत भाव जिन है, जिन पर्याय से परिणत यानी अरिहंत भगवान उस पर्याय से परिणमित हो गए है। और उपयुक्त भाव जिन में क्या लेना, कि हमने अपने ज्ञान में उनका स्वरूप निश्चित किया है, वो उपयुक्त भाव जिन हो जाएगा। ख्याल में आई ना बात? अब यहाँ शंकाकार पूछ रहे, इतने सारे जिन है तो किसको नमस्कार करना? तो कहते इन जिनों में किस जिन को यह नमस्कार किया गया है? समाधान, तत्परिणत भाव जिन, यानी जो अरिहंत अवस्था के जीव है उनको, और स्थापना जिन को यह नमस्कार किया है। स्थापना जिन, जो हम मंदिर जी में हमने भगवान की मूर्ति, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति स्थापन की है, उसको स्थापना जिन कहते हैं। और वो कहते हैं ना, जिन प्रतिमा जिन सा रखी, तो जिनेन्द्र यानी जो भाव से यानी उस पर्याय से परिणत जो जिनेन्द्र भगवान है, अरिहंत भगवान है, और इनके हमने स्थापना इसमें की, तो उनके समान ही इनके साथ नमस्कार आदि व्यवहार होता है। यही कह रहे फिर से देखो, तत्परिणत भाव जिन किसको नमो जिनानम कह दिया पहले सूत्र में, तो कौन से जिन? जो वर्तमान में उस पर्याय रूप से परिणत हो गए है, वो भाव जिन आ गए, अरिहंत सिद्ध दोनों आ जाएगी उसमें। और स्थापना जिनको यह नमस्कार किया गया है। शंकाकार पूछते हैं,
स्थापना में हम लोग को दोनों लेना, सद्भाव और असद्भाव रूप दोनों को नमस्कार।
अभी तो यहाँ सद्भाव रूप ले लो ना।
तो पूजा हम लोग करते हैं वो सद्भाव रूप है, उसको ही करेंगे कि दोनों को करते?
दोनों हो सकती है, नहीं की बात नहीं है, परंतु हम जैसे आपको नमस्कार करेंगे, झुक के नमस्कार करेंगे आगे, वो तो केवल वहाँ तो स्थापना की और वहाँ अष्टक दिया उसके लिए करते हैं, परंतु वो तो सच में देखो तो जो तदाकार स्थापना होती है उसमें ये पूजन अभिषेक वगैरह किसका हो जाएगा? उन्हीं का होगा, है ना? इसमें कुछ विशेषता आती है तो देखेंगे हम। शंकाकार पूछ रहे, अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य विरति और क्षायिक सम्यक्त्व आदि, विरति यानी वो संयम वगैरह जो है गुणों से परिणत जिनको भले ही नमस्कार किया जाए क्योंकि उसमें देवत्व पाया जाता है, किंतु जिन गुण से रहित स्थापना को नमस्कार करना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें विघ्नोत्पादक कर्मों के विनाश करने की शक्ति का अभाव है, यानी वो तो प्रतिमा है। यही जो बात है ना, ये दलील करते हैं तारण पंथ वाले। हम जाते हैं ना वहाँ पर, वो होशंगाबाद भोपाल वगैरह, वहाँ बहुत बड़ी समाज है तारण पंथ नाम की। तारण नाम के मुनिराज हो गए दिगंबर, बहुत अध्यात्म की उत्कृष्ट उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। उस जमाने में क्या था कि कोई आक्रमण हो रहा था ना परकियों का, तो उस जमाने में यानी उन्होंने मूल में तो ग्रंथों की रचना की, उसके बाद जब ये औरंगजेब वगैरह बने तो उस जमाने में क्या करें, उन्होंने तो प्रतिमा जी हो तो अंदर भूमि में गाड़ दिए और वहाँ केवल शास्त्रों की स्थापना रखे, शास्त्र और शास्त्रों की बिल्कुल पूजन वगैरह होती है अभी भी। वो जैसे हम भगवान के सामने अष्टक आदि देते तो वो शास्त्र के सामने देते, वैसे नमस्कार आदि करते, सब बहुत विधिपूर्वक सब चलता है और शास्त्र का भी पठन पाठन चलता है। परंतु अभी क्या कह रहे, जिन प्रतिमा को, ये तो प्रतिमा है, ये तो प्रतिमा है, ये भगवान कहाँ है, उसको नमस्कार नहीं करना। उसमें से भी बहुत सारे लोग अभी टर्न हो गए हैं कि प्रतिमा जी को मानकर नमस्कार आदि करते, अपने शिविरों में आते सुनते हैं सभी, यानी तत्वज्ञान में कहीं कोई फर्क नहीं है। तभी जो विचार पूर्वक पढ़ने सुनने वाले हैं तो उनको तो ये मान्य है, परंतु ऐसा अभी भी हट करने वाले कितने ही है, ये तो प्रतिमा है, ये तो भगवान नहीं है, ऐसा कहकर उसका निषेध करते हैं। उनमें भी ऐसे दो तट है, वहाँ चलते रहते हैं। यहाँ वही तो प्रश्न आए ना यहाँ पर, तो कहते कि जिन गुण से रहित स्थापना को नमस्कार करना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें विघ्नोत्पादक कर्मों के विनाश करने की शक्ति का अभाव है। अब कहते ये शंका है, उसको यहाँ परिहार, उसका निराकरण करने जा रहे हैं। समाधान, उक्त शंका होने पर यह परिहार करते हैं। जिन देव अपनी वंदना में परिणत जीवों के ही पाप के विनाशक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर उनमें वितरागता के अभाव का प्रसंग आता है। ऐसा नहीं कि ये मेरा भक्त है, इसका खुश करो, इसका संकट निवारण करो, उसका नहीं करो। न वे सब जीवों के पाप को नष्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर जिन नमस्कार की विफलता का प्रसंग आता है। कहते यानी उनकी वंदना करने वालों के ही करते, ऐसा भी नहीं है। और कहते हैं कि सभी का कल्याण कर देते हैं नमस्कार नहीं करने वालों का, तो भी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर जिन नमस्कार की विफलता हो जाएगी, फिर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार क्यों करेंगे। तब परिशेष रूप से, परिशेष का अर्थ क्या है, जो बचा हुआ न्याय क्या रहा है? एक तो बताया कि वो तो हाँ जिनदेव, जिनदेव नहीं साक्षात जिनदेव अपने वंदनान में परिणत उसी का विघ्न विनाशक नहीं करते मात्र उनका। दूसरी बात क्या है, सभी जीवों का नहीं करते हैं। तो तीसरी बात क्या रहेगी, परिशेष न्याय कहते हैं उसको। अब बचा हुआ क्या है रे? तो परिशेष रूप से जिन परिणत भाव और जिन गुण परिणाम को पाप का विनाशक स्वीकार करना चाहिए। जिन परिणत भाव है ना और जिन गुण परिणाम पाप का विनाशक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कर्मों का क्षय घटित नहीं होता। वह भी जिन गुण परिणाम, परिणाम हुआ परिणाम भाव, जिन गुण परिणाम भाव किसको कहना, जिनेन्द्र के समान अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य विरति और सम्यक्त्वादी गुणों के अध्यारोप से युक्त और अध्याहार के बल से ही जिनके साथ एकता को प्राप्त हुई स्थापना से भी उत्पन्न होता है। क्या कहना चाहते हैं, जो स्वयं जिनेन्द्र भगवान है, अरिहंत भगवान है, जिन गुण परिणत जीव है और उन्होंने जैसे अनंत ज्ञान दर्शन वीर आदि प्राप्त किए हैं जो ऊपर बताए थे वही, तो कहते कि ये स्थापना में भी उसके साथ एकत्व स्थापित किया हमने, वो साक्षात भगवान है, इस तरह से वहाँ स्थापनी हुई है तो उसके साथ भी अरिहंत जैसा व्यवहार होता है। इसी कारण जिनेन्द्र नमस्कार के समान जिस मूर्ति में जिनकी स्थापना की गई है उस स्थापना रूप जिनको नमस्कार भी पाप का विनाशक है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्योंकि दोनों में कोई विशेषता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कह रहे हैं विशेषता नहीं है, डिफरेंस नहीं है। समझ में आई ना बात, ये उनकी दलील आचार्य ने जो समाधान किया है, क्योंकि सारे गुणों की वहाँ स्थापना की है और हम तो कहते नहीं, नहीं हमने मंदिर में इतने बार नमस्कार किया हमको कोई फल नहीं मिला। तो नमस्कार के भी भेद बताए थे उन्होंने, ज्ञान ध्यान सहित वाले नमस्कार हो गए तो कर्मों का क्षय भी होगा, एक बात बताई थी, और वो ज्ञान ध्यान तो सम्यक तो पूर्वक होता है, वो भी बात हुई थी। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि वहाँ मूर्ति को जो नमस्कार करते तो क्या देखते हैं, अध्यारोप करना, उसमें आरोप करना, हम कहते ना अधि आरोप, उसमें आरोप करने ने उसमें वो व्यवहार किया, उसमें हमने वो नक्की किया ये भगवान है ऐसा, उसमें आरोप ये जो गलत अर्थ में आता है वैसा आरोप नहीं लेना है, हाँ प्रतिष्ठित कर दिया ना हमने, अध्यारोप किया। अध्याहार में भी वैसे अध्यारोप और अध्याहार के बल से, अध्याहार में हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड क्या ऐसा कुछ, उसके मैं एग्जैक्ट अर्थ नहीं मैं बताऊंगी, वो डिक्शनरी देखना मुझे चाहिए। हम कहते हैं उसको अध्यावृत धरते हैं, नहीं सूत्रों में ऐसा होता है ना, उसका वो चल रहा है अध्याहार रूप से। तो यहाँ किसको नमस्कार, अभी हमने किसको नमो जिनानम में किसको कहा, जो 8 नंबर के पेज पर सेकंड लाइन में देखा है ना, जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत, वो तो भाव जिन हुआ, नमस्कार किसको किया, जो समाधान की लाइन, तत्परिणत भाव जिन यानी साक्षात अरिहंत भगवान और स्थापना जिन को यह नमस्कार किया गया है, यानी हम सीमंदर भगवान को वहां विराजमान है अभी साक्षात, जो हमारे 20 तीर्थंकर विराजमान है उनको नमस्कार करते हैं, वो तत्परिणत भाव जिन हो गए। और स्थापना जिनको, हमारे मंदिर जी में सिमंदर भगवान है या हमारे महावीर भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है, उनको नमस्कार करते हैं, ये स्थापना जिनको नमस्कार हुआ और उन दोनों का फल वही बताया है सेम। शंका 9 नंबर पेज पर आए, नाम जिन यानी जिन नाम रखना, द्रव्य जिन उसमें हमने आगम नो आगम वगैरह भेद किए थे सारे, और नो आगम उपयुक्त भाव जिन सब आ गए, नहीं तत्परिणत, तत्परिणत अभी तो हाँ वो सिद्धावस्था भी अरिहंत सिद्ध सब आ जाते हाँ, पर अगर अरिहंत को लेना है तो इसलिए मैंने अभी सिमंदर का नाम लिया हाँ, वर्तमान में जो है भाव में वर्तमान में लेते हमेशा, अभी सिद्धों को भी जिन कहेंगे हम पर अरिहंत की अपेक्षा करनी है तो मैंने अलग से बताया। नाम जिन द्रव्य जिन ये तो हमने जिन द्रव्य जिन के भेद भी देखे थे, और नो आगम उपयुक्त भाव जिन, नो आगम उपयुक्त भाव जिन किसको कहेंगे कि जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान को कहा था, उसको नमस्कार क्यों नहीं करते, समझ में आई बात, यानी जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप निश्चित करने वाले ज्ञान को उसको क्यों नहीं नमस्कार कर रहे। समाधान, नहीं करते, क्योंकि उनमें जिनत्व और जिन स्थापनात्व का अभाव है। किसी को पूछा जाए इनको क्यों नमस्कार करते हैं, तो वो तो शुद्धात्मा है, हम इसको नमस्कार करते हैं, तो शुद्धात्मा वो तो कीड़े मकोड़े भी है ना, उस पर्याय से परिणत जीव को ये नमस्कार आदि क्रिया हो जाती है। व्यवहार भी उनके व्यवहार को देखकर होता है। अभी वो आगामी काल में हो जाएगी, अभी किसी ने डिक्लेयर हुआ है ना, जो आगम में डिक्लेयर्ड है कि श्री कृष्ण आके अभी यहाँ तीर्थंकर होने वाले हैं, तो अभी वो जो वहाँ नरक में है, नारकी है, क्या उनके ऐसे नमस्कार करेंगे उनको, उसको ख्याल में आती है बात? ये बात हो रही है, वर्तमान में उस रूप परिणत है तो उसको ये नमस्कार होगा, नमो जिनानमो उसको कहेंगे। वो द्रव्य निक्षेप से उनको जिन कहना वो आ गई बात, उसमें जो भविष्य में जो कुछ होने वाले उसको भी वो भाव से परिणत उसमें भी नहीं लिया था, द्रव्य निक्षेप में उसको भी नहीं लिया था, आगम नो आगम में वो आगम संबंधी बात थी। हाँ, भविष्य की उस रूप से वो स्थापना में आ जाती है। भविष्य 24 को भी नमस्कार करते या मन में स्मरण करके नमस्कार करते तो उनको वो उनकी वो पर्याय याद करके फिर उसको नमस्कार करते। हाँ, उस पर्याय को नमस्कार, उस परिणत, ये हमारे ज्ञान में उस रूप परिणत जीवों को हम नमस्कार करते, पर वो जिन अभी जहाँ किसी अवस्था में उसको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, यानी वो द्रव्य निक्षेप से उनको जीन वो भी नहीं लिया इसमें, जो आगामी काल में जीन होने वाले उसको नहीं लिया कहीं पर। आगम और नो आगम इतने भेद किए द्रव्य निक्षेप में। हाँ, वो नैगम नए में जानेंगे कि ये भविष्य नैगम नए की अपेक्षा अभी वो हमारे श्रेणी राजा तो भूत नैगम नए से थे, वर्तमान में नारकी है, और भविष्य काल में जो हो गए वो तो नए की अपेक्षा होगी। यहाँ निक्षेप कर रहे हैं हम, उसमें जिनेंद्र भगवान का निक्षेप नहीं हो रहा है, तीर्थंकर करके ही वंदन करते हैं, वर्तमान के वो वंदन नहीं कर रहे हैं। भविष्यकालीन तीर्थंकर उनके पर्याय को वर्तमान में जानकर उनको नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, वो तो भाव में तो वर्तमान की ही लेना, और ज्ञान से जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाला ज्ञान यानी कौन सा है? अभी वो भी श्रुत ज्ञानी जो जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव जी, हाँ जी, उसको भी उसको कहना बात अलग है, वंदना करने की बात नहीं ली। हाँ, ये प्रश्न है उनका, ये प्रश्न है कि जो हमने नाम निक्षेप कहा, द्रव्य निक्षेप कहा, और नुआगम उपयुक्त जो लिया जीव उसको क्यों नहीं नमस्कार करते, तो किसी उनमें जिनत्व नहीं है और जिन स्थापनात्व का अभाव है, यानी स्थापना में भी हमने उनके जिनत्व की स्थापना कर देते हैं। कारण कि उन तीनों में ऊपर जो बताए थे ना, उन तीनों जिनों में जिनत्व तो बनता ही नहीं, क्योंकि अनंत ज्ञानादि युक्त जिनके कारणभूत गुणों से रहित उनके जिनत्व का विरोध है। स्थापनापना भी उनके नहीं है, क्योंकि उनमें जिनत्व के आरोप का अभाव है। जैसे हम मूर्ति में स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं, वो किसी मुनि या किसी मनुष्य में स्थापना करके उसकी पूजा नहीं होती है। ऐसे वो प्रथा है कहीं कहीं, वो नेपाल में या वहाँ उस बाजू में कोई छोटे बच्चे हैं, लड़की लड़का, उसी में वो देवी की स्थापना करते, फिर उसको देवी समान पूछने लगते। यहाँ कहीं मनुष्य में स्थापना की बात नहीं की है, यानी अभी गृहस्थ में उसमें भगवान की स्थापना कर दो, ऐसा नहीं होता। और यदि आरोप है तो वे नामादिक जिन नहीं हो सकते। क्या कहा? स्थापना पना भी उनके नहीं है, क्योंकि उनमें जिनत्व के आरोप का अभाव है। और यदि आरोप है तो वे नामादिक जिन नहीं हो सकते, क्योंकि नाम में वो कोई जिनत्व की बात वहां नहीं होनी चाहिए, तब उनको केवल नाम रखा है, क्योंकि उनका स्थापना में अंतर्भाव होता है। और जिनत्व व जिन स्थापना से रहित अन्य जिनों में किया गया नमस्कार पाप प्रणाशक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग दोष आता है। अब जिन स्थापना इन्हें क्या होगा जिसमें जिनत्व की स्थापना की है, और हम कहते हैं जिन ब्रह्म दर्शन से तो पाप का नाश होना चाहिए, और हमने तो कितने बार यात्राएं की क्या किया, परंतु उसमें क्या जिनत्व, जिनत्व देख के नमस्कार किया, अरे कितनी हाइट है और कितना वो कलर क्या है पाषाण का और कैसी बनी है और कितनी हसमुख है, यानी वो तो बाह्य जैसे ये देह की बात करते हैं, वहाँ उस देह की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ जिनत्व अगर हमें भाषित होगा तो वो सच्चा नमस्कार होगा। शंका, यदि ऐसा है तो तीन कालों से विशेषित मुनि व जिनका शरीर एवं उर्जयंत चंपापुर और पावानगर आदि को किया जाने वाला नमस्कार निष्फल हो जाता है, क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं तीन कालों के जो मुनिराज है और जो मुनि के शरीर को भी नमस्कार करते हैं हम, या उर्जयंत, समझते किसका नाम है उर्जयंत, ब्रह्मा गिरनार को उर्जयंत कहते हैं, चंपापुर पावपुर ये क्या है सिद्ध क्षेत्र है, वो वहां नमस्कार क्यों करते हैं? हाँ, वो निष्फल हो जाएगा। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए क्योंकि वे उनके सद्भाव स्थापना या असद्भाव स्थापना में अंतर्भूत है, इसलिए उन्हें किया गया नमस्कार निष्फल मानने में विरोध आता है। सद्भाव स्थापना नमस्कार और असद्भाव स्थापना नमस्कार के फलवान होने पर, यानी उनका भी फल मिलता है ऐसा समझने पर, जिन स्थापनात्व को जिन पूरा चाहिए, जिन स्थाने जिन स्थापना, जिन स्थापनात्व को प्राप्त सबों को किया गया नमस्कार फलवान होता है कहा भी है, यानी जहां जहां जिनत्व की स्थापना करके हम नमस्कार करते हैं वो सफल है, क्योंकि उसमें वो जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करके हम उसको नमस्कार करते हैं। केवल शरीर को वहां नमस्कार नहीं है किसी के, उनके तो गुणों की बात है। तीन नंबर का ऊपर जो श्लोक है, गाथा, आलंबणे ही भरियो लोगो झाई दुमनस खवयस जम जम मनसापस ही तम तम आलंबणम होई। ये भगवती आराधना का उन्होंने सूत्र बताया यहाँ पर। ध्यान में मन लगाने वाले क्षपक के लिए, अभी क्षपक श्रेणी में वो जो ध्यान में आरूढ़ जो जीव है, यह लोक ध्यान के आलंबनों से परिपूर्ण है। ध्यान का आलंबन है जिस पर वो ध्यान केंद्रित हो उसको ध्यान का आलंबन कहते हैं, तो उनके लिए ये पूरा लोक ही ध्यान के आलंबनों से परिपूर्ण है। ध्यान में ध्याता जो जो मन से देखता है, अर्थात जिस जिस वस्तु का मन से विचार करता है, वह वह आलंबन हो जाता है, यानी मन के द्वारा उसका आलंबन लेकर उस पर ध्यान केंद्रित कर दिया उसने। तो आप कहेंगे पूरे लोक में तो कितने पदार्थ हैं, कुछ भी पदार्थ हो सकता है, क्योंकि वो हमने देखा है वहाँ तत्व वितर्क विचार में वो कितने एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर विव्यंजन संक्रांति योग संक्रांति वो सब होते रहते वहाँ पर, परंतु वो वितरागता के साथ जानना हो रहा है इसलिए वहाँ निर्जरा भी है। केवल पर को जानने से राग होता है ये जो मान्यता है वो उसके कारण नहीं हो रहा है, और वहाँ इन सभी चीज़ों को जानने से कोई उनको राग द्वेष नहीं हो रहे हैं। शंकाकार पूछते हैं, बुद्धि से जल में स्थल में अथवा आकाश में संकल्पित जिन चार प्रकार के निक्षेपों में से किसमें अंतर्भूत है? यानी हमने संकल्प किया तो किसमें संकल्पित है? तो कहते हैं नो आगम भाव निक्षेप में, क्योंकि वह उपयुक्त स्वरूप है। क्या कहते हैं? ऐसे भी कहते ना, ऐसे नमस्कार करके ऐसा नमस्कार करते जिनेंद्र भगवान को, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, ये बैठे है मुनिराज भी नमस्कार करते हैं, वो संकल्प करके नमस्कार करते हैं, तो कहते वो किस में चला जाएगा? तो नो आगम भाव निक्षेप में, क्योंकि हमने क्या कहा था वहां पर, उसमें स्थापना तो नहीं है, परंतु जिन गुण का वो वहाँ वो शब्द क्या आया था उन्होंने, जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान, जिन स्वरूप को ज्ञान में ले लिया ना उन्होंने, तो कहते यह नो आगम भाव निक्षेप। हाँ ज्ञान, जिन हाँ जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत जीव,
तो आगे तो उसका निश्चय किया ना कि उसको नमस्कार करना कि उसका फल नहीं मिलता है।
देखो 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 आप घोटाला कर रहे, फिर से मैं पढ़ती हूँ। तो यह नो आगम भाव निक्षेप क्या है, वो जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले
ज्ञान से
परिणत जीव,
तो ये नो आगम भाव जीव है।
यहाँ क्या कहा,
जिसका ज्ञान सही है उस वो ज्ञान से परिणत जीव को हम लोग ने नो आगम भाव निक्षेप, अरे भाव जीव में डाला था, तो उसको तो मना किया नेक्स्ट पेज में, तो उसको नमस्कार क्यों नहीं करते। और यहाँ पे
देखो देखो ये नमस्कार करने वाला कौन है, जिन्हें जिन स्वरूप को ग्रहण किया है ज्ञान में, और वो ज्ञान में उन्होंने संकल्प किया, ये यहाँ जिन है और उनको नमस्कार किया, वो जानने वाले जीव को नमस्कार नहीं कर रहे।
नो अगम भाव युक्त जीव से परिणत,
देखो देखो वो ये क्या है, उसको भाव निक्षेप में उसने उस निक्षेप उसने उसमें निक्षेप रखा, उसने मन के द्वारा सोचा और वहाँ उसने वो निक्षेप किया कि ये भगवान है, जैसे हम कहें आँख बंद करके हमने कहा ये जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हाँ ना, ने जल में स्थल में आकाश में संकल्पित जिन, ऐसा उन्होंने ये बात बताया। पहले तो उन्होंने सिद्ध क्षेत्रों को बताया, वो बात अलग थी, यहाँ बुद्धि से उसमें क्या कर दिया है, वहां तो वहां से कोई सिद्ध हुए थे, पर बुद्धि से कहीं पर भी संकल्प करके नमस्कार कर रहा है उसकी बात है। वो संकल्प करने वाला जीव कौन है, वो संकल्प किसमें किया, तो ज्ञान में किया उस, तो वो ज्ञान संकल्प करने वाले जीव को नमस्कार नहीं कर रहे, संकल्प जिसका किया वो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे। ख्याल में है ना बात, इस कारण अर्थात संकल्पित जिन को भी किया गया नमस्कार सफल है। हम कहते नमोकार मंत्र हम कहीं पर भी गा, अभी कोई है ना, मूर्ति नहीं है, कोई नहीं है, और फिर भी हम नमोकार मंत्र मन ही मन में सोचते और भगवान का स्वरूप यहाँ याद करते हैं, बुद्धि के द्वारा हमने वो संकल्प किया, तो वो भी कहते सफल है। हाँ नहीं नहीं, वो नौ अगम भाव निक्षेप है, उस जीव को नमस्कार नहीं कर रहे। हाँ वो जीव जो जैसे कोई समय दृष्टि ग्रस्त है और उसने वो भगवान का स्वरूप निश्चित किया है, उस जीव को नहीं नमस्कार कर रहे, उसको जिन किस निक्षेप से कह रहे, वो नौ अगम भाव निक्षेप की अपेक्षा कह रहे। हाँ वो उसने वो निक्षेप किया, उसमें संकल्प में निक्षेप किया कि ये, यानी उसने बुद्धि में ये ग्रहण किया कि ये जिनेंद्र भगवान है और उनको नमस्कार किया।
तो मिथ्या दृष्टि की नमस्कार करते हैं तो उसका कोई फल ही नहीं है, ऐसा कहना है?
बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उसका नमस्कार ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि को कोई फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान और ध्यान से परिणत और उसके लिए भी समय दृष्टि होना चाहिए, तभी उसका नमस्कार बताया, और वो असंख्यात लोग प्रमाण भेदों सहित बताए थे, उत्कृष्ट नमस्कार और वो जगन्य नमस्कार की बात की थी ना उस दिन। यानी जब तक वो समय दर्शन ने जिनेंद्र का स्वरूप ही निश्चित नहीं किया है, तो उसका नमस्कार कैसा सच्चा, जिनेंद्र का स्वरूप जिस समय निश्चित हो जाएगा उस समय वो समय दर्शन प्राप्त करेगा और फिर आगे बढ़कर और उसमें स्थिरता करेगा तो चारित्र की प्राप्ति होगी, तब हम कहेंगे वो समय दर्शन ज्ञान चारित्र सहित है, और उसका जो नमो जिनानम कहना है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार कहेंगे और उसके कारण उसके ये कर्मों की निर्जरा कहो या निधत्ति निकाचित जाते वगैरह कहो, वो बात होती है। देखो विशेषार्थ में क्या कहना चाहते हैं, काष्ठ व वस्त्रादि रूप तदाकार या अतदाकार वस्तु में जो किसी अन्य पदार्थ की कल्पना की जाती है वह स्थापना निक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार स्थापना में दो पदार्थों का होना आवश्यक है, किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की संकल्पना। परंतु यहाँ चूंकि बुद्धि से जलथलादि में की जाने वाली जिन की कल्पना में दो पदार्थों का अस्तित्व है नहीं, अथवा स्थापना नहीं कहला सकती। वहां दो पदार्थ भिन्न नहीं है, ये तो केवल बुद्धि में लिया है। किंतु जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत होने के कारण उसे उपयुक्त नवागम भाव जिन कहना उचित है। वो जीव को नवागम भाव जिन कहेंगे, परंतु उसने जो नमस्कार किसको किया, वो बुद्धि में जो ग्रहण किया उन जिनों को नमस्कार किया। जैसे ये ऊपर के जो ग्रेवेक आदि देव तो यहाँ नहीं आते हैं, ये इंद्र तो सात हाथ जाके आगे वहीं से नमस्कार करता है, वहाँ उनके सामने कहाँ है जिनेंद्र भगवान। हम भी किसी दिशा में नमस्कार करते हैं ना, तो वो उनका संकल्प मन में लाकर जिनेंद्र भगवान का स्वरूप सोच कर नमस्कार करते हैं। कहीं बैठे बैठे भी नमोकार मंत्र हम जब स्मरण करते हैं तो वो पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। हमारे ज्ञान में उनका स्वरूप निश्चित हो तो हमने केवल मुख से नाम बोलने में भी कुछ नहीं होगा। ये नाम स्मरण की जो बात आती है ना, नाम स्मरण से फायदा होगा ऐसा कहते हैं सभी मतों में। अन्य मतों में भी कहते नहीं तो भगवान का नाम लेना चाहिए, पर भगवान का नाम उसको स्वरूप जाने बिना केवल नाम ही नाम लिया, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, और सिद्ध क्या होते उसका स्वरूप मालूम नहीं है, तो जो फल ये सच्चे नमस्कार से मिलता है कहाँ, या वो उसको कैसे मिलेगा। इस सूत्र के द्वारा पांच गुरुओं, ये पांच गुरु कौन है, पंच परमेष्ठी, पांच गुरुओं, वो भी महामुनि है ना, परम गुरु कहा उनको। इस सूत्र के द्वारा पांच गुरुओं और उनकी स्थापनाओं को नमस्कार किया गया है, क्योंकि यहाँ सभी की संभावना है। वह इस प्रकार से अब मुनिराजों को भी जिन कह दिया, क्यों, सकल जिन और देश जिन के भेद से जिन दो प्रकार के हैं। ये मुनिराजों को देश जिन कहा, देश ने एक देश यानी पार्शल, जो घातिया कर्मों का क्षय कर चुके हैं वे सकल जिन हैं। वे कौन है, अरहंत और सिद्ध। इतर आचार्य उपाध्याय और साधु देश जिन हैं, क्योंकि उन्होंने तीव्र कषाय इंद्र एवं मोह को जीत लिया है। वो जीतने के अर्थ में वो जिन शब्द लगाया है ना। अब कहते हैं सकल जिन, शंकाकार पूछते हैं पेज नंबर 11 पर, सकल जिन को किया गया नमस्कार पाप का नाशक भले ही हो, क्योंकि उनमें सब गुण पाए जाते हैं, किंतु देश जिनों को किया गया नमस्कार पाप प्रणाशक नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें वे सब गुण नहीं पाए जाते। समाधान, नहीं, क्योंकि सकल जिनों के समान देश जिनों में भी तीन रत्न पाए जाते हैं, समय दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों रत्न उनमें है, और तीन रत्नों के सिवाय देवत्व के कारणभूत अन्य कोई भी गुण सकल जिनों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अन्य गुणों की उनमें उपलब्धि नहीं होती। वो गुणों की बराबर लिखना, यानी सकल जिन भी उनमें क्या गुण है, उसमें वही समय दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ज्ञान में केवल ज्ञान ले लेना, चारित्र में परिपूर्णता है वो। इसलिए सकल जिनों के नमस्कार करने के समान देश जिनों को नमस्कार करना भी सब कर्मों का क्षय कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। फिर शंकाकार पूछते हैं,
प्रतिभाधारी जीव को हम लोग नमस्कार नहीं कर सकते,
उनकी जो बाह्य जो है वो जिन प्रतिमा यानी जिनेंद्र भगवान जैसी उनकी मुद्रा नहीं है, वेश नहीं है। मुनिराजों को भी जैसे भगवान है परिग्रह रहित, वैसे वो भी है, और उनमें स्थिरता कितनी ज्यादा है, केवल संज्वलन बाकी है उनका। और यहाँ तो इंद्रियों का संयम कहाँ है इनके, वो तो संयम ही है, यहाँ तो असंयम संयम असंयम चल रहा है। शंका, सकल जिनों और देश जिनों में स्थित तीन रत्नों के समानता नहीं हो सकती, वहां तो परिपूर्णता है, यहाँ तो एक देश है, क्योंकि संपूर्ण और असंपूर्ण की समानता का विरोध है। संपूर्ण रत्नत्रय का कार्य असंपूर्ण रत्नत्रय नहीं करते, क्योंकि वे असमान है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन और चारित्र के संबंध में उत्पन्न हुई समानता उनमें पाई जाती है, और असमानों का कार्य असमान ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि संपूर्ण अग्नि के द्वारा किया जाने वाला दाह कार्य उसके अवयव में भी पाया जाता है। यानी बहुत बड़ी अग्नि मशाल को लेकर जो हम उस किसी को जला सकते हैं या शुरू कर सकते हैं, वही वो लाइटर से भी आप गैस जला सकते हैं ना, वो या अन्य कोई छोटी मैस्टिक की, उससे भी आप अग्नि का वो दाह कार्य देखने में आता है। अथवा अमृत के सैकड़ों घड़ों से किया जाने वाले निर्विशीकरणादि कार्य, निर्विशीकरण ने उसका तो विष का नाश कर देना, चुल्लू भर अमृत में भी पाया जाता है। यानी उसके घड़े के घड़े नहीं पीना जान पड़ते, उसके छोटे से वो घूट भर अमृत से भी वो कार्य होता है। इसके अतिरिक्त देश जिनों में स्थित तीन रत्नों का सकल जिनों में स्थित रत्नत्रय से कोई भेद नहीं है, वो एक ही जाति है उसकी, उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, वो थोड़ा एक देश और पूर्ण संपूर्ण इतना भेद है उसमें जरूर, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर समस्त पदार्थों से संबद्ध होने की अपेक्षा समानता पाई जाती है। और आविर्भाव और अनाविर्भाव से, आविर्भाव ने प्रकट होना किया गया भेद स्वरूप से उनकी समानता का विनाश नहीं है। यानी वो आविर्भाव यानी वो क्या है, ज्ञानावरणादि है ना उनके, अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो आवरण है उनके, और केवल ज्ञानी जो अरिहंत भगवान उनके तो पूर्ण आविर्भाव हो गया है, और इनका क्या है, अनाविर्भाव है, अनाविर्भाव, क्योंकि परंतु उसमें उसके कारण उनमें कोई समानता का अभाव नहीं हो जाता कि आविर्भूत सूर्यमंडल और अनाविर्भूत सूर्यमंडल के सूर्यमंडल पने की अपेक्षा समानता पाई जाती है। यानी बादल वो छाए हुए हो या नहीं हो, सूर्यबिंब तो सूर्यबिंब है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक जनों के अनुग्रहार्थ गौतम भट्टारक महाकर्म प्रभृति प्रावृत को महाकर्म प्रकृति प्रावृत को आदिम नमस्कार करके पर्यायार्थिक नयुक्त शिष्यों के अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्रों को कहते हैं। मैंने नमो जिनानम पहले बताया है, उसमें तो सभी को अभी मैंने सकल जिन और देश जिन सबको नमस्कार किया, अभी उसमें पर्यायार्थिक नये ने उसके भेद करके उसमें उनके नाम ले लेंगे। यहाँ पर ये उत्तर सूत्रों को कहते हैं, नमो ओहि जिनानम, अवधि जिनों को नमस्कार हो। अवधि शब्द अपने में प्रवृत्त है, क्योंकि अवधि यह इस प्रकार स्वयं वह शब्द कहा गया है, क्योंकि यह अपने में अवधि शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। अवधि का अर्थ क्या है, मर्यादा। सद्भाव और असद्भाव रूप स्थापना में भी यह अवधि शब्द रहता है, क्योंकि यह वह अवधि है। इस प्रकार आरोप के बल से अवधि के साथ एकता को प्राप्त द्रव्य पाए जाते हैं। देखो क्या कहा, जैसे जिन शब्द पर हमने सारे निक्षेप लगाए, ऐसे अवधि शब्द पर भी लगा रहे, ये कहना चाहते
हैं।
अवधि ज्ञानी मुनिराज या अवधि ज्ञान पूर्वक होने वाले जिन, अभी करेंगे उसका अर्थ। अभी कहाँ पहुंचे हम वहां तक? नहीं, शब्द शब्द देखो, अवधि यानी मर्यादा, मर्यादा यानी वो हम नाम, किसी का अवधि नाम रख दिया, वो नाम नाम हो गया ना निक्षेप, अवधि नाम पर ये निक्षेप हुआ। स्थापना निक्षेप में ये उसकी अवधि है। आपने कहा ना हम पेपर में बैठे हैं तो ये 3 घंटे की आपकी अवधि है, काल की अवधि बता दी। 3 घंटे में आपको जितना लिखना है लिख दो, फिर पेपर दे के चले जाओ। या कहते हम अवधि है, आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, ये आपकी अवधि है, उसको मर्यादा कहेंगे। जो अवधि जो है द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की वगैरह, वो अवधि कहने में आती है। यही कह रहे, फिर से पढ़ते हैं। अवधि शब्द अपने में प्रवृत्त है क्योंकि अवधि इस प्रकार स्वयं वह शब्द कहा गया है। अवधि शब्द ही बताया ना, अवधि उसको बता दिया नाम उसका, क्योंकि यहाँ अपने में अवधि शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसका अपना कुछ अर्थ है, क्या है वो? मर्यादा के अर्थ में अवधि शब्द ही आता है। सद्भाव और असद्भाव रूप स्थापना में भी यह अवधि शब्द रहता है क्योंकि यह वह अवधि है। इस प्रकार आरोप के बल से अवधि के साथ एकता को प्राप्त द्रव्य पाए जाते हैं। कहीं मर्यादा के अर्थ में भी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मानुष क्षेत्र की अवधि यानी मर्यादा मानुषोत्तर पर्वत है, लोक की अवधि तनुवात पर्यंत है, यानी मर्यादा की बात। कहीं पर ज्ञान अर्थ में भी यह शब्द आता है, जैसे अवधि ज्ञान से जानता है। यहाँ अवधि शब्द को, वो शब्द बराबर लिखना, शब्द को ज्ञान के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। अवधि जिन यानी वो मर्यादित जिन, ऐसा उसका अर्थ नहीं करना है। अवधि ज्ञान सहित वाला वहां उसमें अर्थ ले लेना है। शंकाकार पूछते हैं, मर्यादा अर्थ में रूढ़ अवधि शब्द ज्ञान के अर्थ में कैसे रहता है? ये ज्ञान के लिए अवधि शब्द क्यों लगाया? उसका समय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार असी से सहचरित पुरुष, असी यानी तलवार, वो असी मसी आते हैं ना शब्द, तो तलवार से सहित पुरुष के लिए उपचार से असी कहने में कोई विरोध नहीं। कल बात भी बोली थी ना, मुनिराज पीछे धारण करते, उनको भी पीछे, हमारे यहाँ गांव में इतने पीछे आई है, ऐसा कहने का प्रघात है। तो ऐसे ही जो तलवार सहित पुरुष है वो उपचार से उसी को तलवार कहे, हमारे यहाँ इतनी तलवारें जा रही है, उसी प्रकार अवधि से सहचरित ज्ञान को अवधि ज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं आता। अथवा अवाग्धानात अवधि ही, अर्थात जो अधोगत पुद्गल को अधिकता से ग्रहण करे वह अवधि है। इस व्युत्पत्ति से, यानी ये जो शब्द कैसे तैयार हुआ यदि उसको देखेंगे, ज्ञान को अवधिपना घटित होता है। इस व्याख्यान से मति और श्रुत ज्ञान के अवधित्व का निराकरण किया गया है। फिर शंकाकार पूछते हैं, पूर्वोक्त व्याख्यान से, यहाँ जो ज्ञान को अवधि ज्ञान कह दिया, तो कहते कि मति श्रुत और मनपरे ज्ञान को अवधि से सहचरित होने के कारण अवधि संज्ञा का प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होता? क्या कहना चाहते हैं? मति श्रुत और मनपरे ज्ञान में भी अपनी अपनी मर्यादाएं तो है, उसकी अपनी अपनी परिभाषा, अपनी मर्यादा कितना जानते हैं क्या? जैसे इंद्रिय ज्ञान की भी मर्यादा बताई है ना, सर्वोत्कृष्ट वो चक्षु इंद्रिय से कहाँ तक जानता है, वो बात आती है ना शास्त्र में, आती है स्पर्शन इंद्रिय का, रसन इंद्रिय का, अधिक से अधिक दूर तक का कितना विषय को ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी मर्यादा तो है। या हम देखते हैं चक्षु से कितनी छोटी चीज जान सकते हैं, वो तो हम माइक्रोस्कोप से दूरबीन से जाएंगे डायरेक्ट चक्षु से, उसकी भी अपनी अपनी मर्यादा है। यही प्रश्न है उसका कि उनको भी अवधि नाम क्यों नहीं दिया, ये उनका सवाल है। नहीं, क्योंकि उन ज्ञानों में उस प्रकार रूढ़ी के होने में किसी निमित्त का अभाव है, यानी वहां उसकी रूढ़ी से उसको नहीं कहते, बस इतनी बात है। तो फिर शंकाकार पूछते अवधि ज्ञान में अवधि शब्द के व्यवहार का क्या निमित्त है, उसका निमित्त क्या है? वहां तो निमित्त नहीं कह रहे, अवधि ज्ञान उसको नहीं कहते क्योंकि वहां वैसा निमित्त नहीं। तो जिसको हम अवधि ज्ञान कहते हैं उसमें क्या निमित्त है, उसका समाधान। अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान अवधि से सहित और उपरिम केवल ज्ञान अवधि से रहित है, यह बतलाने के लिए अवधि शब्द का व्यवहार किया गया है। आपको ऐसा कोई उदाहरण मालूम है जो नीचे रूपे को बताने वाले हैं? हाँ लक्ष्मी जी, नीचे और ऊपर क्या अर्थ है, ज्ञान के कितने भेद है? मति शुद्ध अवधि मन परे केवल
ज्ञान, नीचे वाला है और केवल ज्ञान नीचे बता
रहे। ये विषय की अपेक्षा मन परे ज्ञान को भी नीचे का कहेंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान जहाँ तक जानता है उसका विषय ज्यादा है, मन परे ज्ञान का इतना नहीं है। मन परे ज्ञानी कितने क्षेत्र तक को जानते हैं? मानुष, हाँ हाँ, नहीं मैं दूसरा बता रही हूँ मन पर। हाँ मैं पूछा, आपने उत्तर सही दिया, उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले अभी मैंने बताया है कि नीचे के ज्ञान में क्या लेना, मति श्रुत और मन परे को भी लेना, क्योंकि उसका भी लिमिट जो उसकी मर्यादा वो इससे छोटी कम है, इसलिए अवधि के नीचे आ गए और केवल ज्ञान में अवधि के ऊपर है। यहाँ पढ़ेंगे, देखो फिर से समाधान को पढ़ते। हाँ बोलो। देव सबके जिसको मन है उसके सबके, अभी नार के यहाँ नहीं आते हैं, ये तो नीचे है और इनका क्षेत्र लिमिटेड है ना, मनुष्य क्षेत्र तक को ही जानते हैं। और मनुष्य क्षेत्र में भी चौकोर लेना है, उसमें गोलाकार नहीं लिया था, 45 लाख योजन बाय 45 लाख योजन के स्क्वायर तक को जानते हैं, इसलिए चतुष्कोण में तीर्यंचों को भी जानेंगे। यह मन परे ज्ञान की मर्यादा है। हाँ, क्या क्या
देव लोग के मन की बातें,
देव यहाँ आते हैं ना, देव यहाँ सामने आएंगे इस लोक में तो जानेंगे उनके भी मन की बातें, और यहाँ पर भी बाकी तो होते ही निरंतर होते हैं, कितने होते हैं। विशेषार्थ, यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि मन पर ज्ञान भी तो सावधि है, उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा तो है, परंतु वह अवधि ज्ञान से नीचे का ज्ञान नहीं है किंतु उससे ऊपर का है। ये शंका कोई नहीं, क्योंकि मतिशुद्धा अवधि मन पर केवला नहीं ऐसा कहते हैं, तो वो उसका नाम बाद में बताया है। अतः अवधि ज्ञान से, हाँ मैंने वो बताया ना नीचे और ऊपर, आपने उसका बरोबर दृष्टांत दिया, जिसे हम प्रमत्त संयत शब्द कहते हैं। तो प्रमत्त ने छठे गुणस्थान के सारे नीचे के जो गुणस्थान है वो प्रमत्त वाले, और यहाँ से ऊपर के वाले सारे असंयत है, ये सारी संयत है, संयत है, संयत है। यहाँ तक के छठे तक के सारे प्रमत्त है और छठे से ऊपर सारे संयत है, तो इसका नाम है प्रमत्त संयत। ऐसे अवधि शब्द जो लगाया है तो इसके नीचे के मति श्रुत मन पर सारे सावधि ही है, अवधि सहित ही है, ऊपर का केवल ज्ञान अवधि से रहित है। यहाँ इसीलिए प्रश्न हो रहा है, मन पर तो ऊपर का ज्ञान है, नीचे का कहाँ है? अतः सेकंड लाइन लास्ट, अवधि ज्ञान से नीचे के सब ज्ञान अवधि सहित और उपरिम केवल ज्ञान अवधि से रहित है, यह बतलाने के लिए अवधि शब्द का व्यवहार किया गया है, यह समाधान, ये इन्वर्टेड में पूरा समाधान डाला है, ठीक नहीं मालूम होता है। इस शंका का समाधान यह है कि मन परे ज्ञान का विषय चूंकि औघी ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म है, अतः वह भी विषय की अपेक्षा औधी ज्ञान से नीचे का ही ज्ञान है, यानी उसका कम क्षेत्र के लिए कम उसके बात है, उसकी मर्यादा कम हो जाती है, इसलिए पूर्वोक्त समाधान संगत ही है। मतिश्रुत अवधि मनःपरे केवलानि ज्ञानम, इस प्रकार तत्वार्थ सूत्रादि में जो मनःपरे ज्ञान का अवधि ज्ञान से ऊपर निर्देश किया गया है, उसका कारण संयम का सहचारित्व है, यानी संयमियों के वे होता है और वो उससे अधिक विशुद्धि के साथ होता है, इसलिए उसको ऊपर बाद में बताया है। उसकी मर्यादा कम है ना, उसका क्षेत्र भी कम है। हाँ, क्योंकि दूसरे के मन में स्थित जो संबंधी विचार वगैरह चल रहे उसको जाने ना, रूपी पदार्थ संबंधी के विचार, और यहाँ तो उसका अवधि ज्ञान तो कितने असंख्यात लोक प्रमाण उसमें होते तो भी जानते, इतना क्षेत्र इतना काल, भाव भी उतने लेना, परमाणु तक को जानते हैं।
मन पर ये ज्ञानी अवधि ज्ञानी होगा ऐसा नियम
नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसको मन पर ये ज्ञान है उसका अवधि ज्ञान होता ही है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी को मतिश्रुत मन पर ये होगा, किसी किसी को मतिश्रुत अवधि होगा, और किसी किसी को मतिश्रुत अवधि मन पर ये चारों होगी, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हाँ, जो तीर्थंकर होने वाले जीव है वो उनके दीक्षा लेते ही ये चार ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, उनके गणधरों के भी होते हैं। अवधि मतिश्रुत अवधि तो जन्म से ही उनके, हाँ जन्म से क्या, देव और नरक में से आए तो वहाँ पर भी तो थे ही थे उनके मतिश्रुत अवधि, क्योंकि समय दर्शन के साथ आए हैं, वहाँ पर भी थे। हाँ, ये कल ही बात आई थी इसमें, किसमें आई थी, नियम सार के प्रवचन पंचस्तिकाय, किसमें आई थी, पंचस्तिकाय में आई थी। जन्म से, यानी आपका प्रश्न है जो जहाँ बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, हाँ वो तब बाद में उसको अवधि ज्ञान होता होगा, ऐसा पढ़ने में नहीं आया। अब हो सकता है वो पहले समय दृष्टि भी हो जन्म से, अभी उसके डिटेल्स तो नहीं आते ना कहीं पर। देखो, यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा निर्देश नहीं है, निर्देश ने कथन, अवधि जिनों का नमस्कार जो कहा है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का अधिकार है। अब यहाँ भेदों की चर्चा है ना, पहले नमो जिनानम कहकर सबको द्रव्यार्थिक नय से बात बताई थी, अब एक एक को अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ परमावधि सर्वावधि और अनंतावधि का भी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि आगे इनके पृथक सूत्र देखे जाते हैं, इसी कारण यह देशावधि का निर्देश है ऐसा समझना चाहिए। ओ क्या कहते हैं, यह अवधि जिन कहने से देशावधि को यहाँ समझना चाहिए कहते हैं, यानी मुनिराजों को भी देशावधि ज्ञान है उसकी बात कह रहे। समाधान, ये शंकाकार पूछ रहे, नाम से एक देश अवधि से देशावधि कैसे जाना जाता है, यानी यहाँ तो केवल अवधि जिन इतना ही कह दिया तो देशावधि वो वाले है, ये ऐसे आपने कैसे समझ लिया, क्योंकि एक तो आगे सर्वावधि परमावधि की बात अलग से बताई, इसलिए एक देश यानी वो तो देशावधि होना चाहिए। दूसरी बात कि वहां तो छोटा ही नाम है, केवल अवधि कहा तो आपने देशावधि कैसे जाना, नहीं क्योंकि भामा से सत्य भामा, यानी भामा शब्द से वो सत्य भामा के लिए भामा कहने की पद्धति है, सेन से भीमसेन और देव से बलदेव इत्यादि को में नाम के एक देश से भी नाम वालों को विषय करने वाले ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। हमेशा कहते हैं हम सुमेरु कहने से सुदर्शन मेरु समझ लेते हैं हम। अब ये देशावधि ज्ञान के भेद यहां बताएंगे। वह देशावधि तीन प्रकार का है, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट यानी मध्यम, जो जघन्य भी नहीं और जो उत्कृष्ट भी नहीं। उनमें चूंकि जघन्य अवधि विषय की प्रमाण प्ररूपणा के बिना जघन्य देशावधि की प्रमाण प्ररूपणा का कोई उपाय नहीं है, अतः जघन्य विषय की प्ररूपणा करते हुए जघन्य अवधि के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं। वही इस प्रकार है, ये जघन्य अवधि यानी उसके जो अवधि ज्ञान का जो जघन्य भेद है वो कहाँ तक को जानता है, उसके द्रव्य क्षेत्र की काल की मर्यादा क्या है उसको बताएंगे, तो उसका प्रमाण बताएंगे। जघन्य से नहीं, जघन्य से द्रव्य में क्या लेना, कितने सूक्ष्म स्कंद तक जानता है वो तक लगाना उसको। जैसे हम हमेशा हम उदाहरण देते हैं ना, वो आंखों के जांच करने जाते हैं हम, तो कितने लाइन तक पढ़ सकता है, कौन सी पंक्ति तक पढ़ता है वो उसके, वो हम कहे ना कोई दूसरे तक ही पढ़ता है तो उसका आंखें जो कमजोर है, जो पांचवी लाइन तक पढ़ता है उसके जो बराबर है शार्प है, तो अभी उसके किसमें अवधि लगती है वो इस प्रकार है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से विषय चार प्रकार का है, लिखो चार के बाद प्रकार का है शब्द डालो, क्योंकि ऊपर बताए ना विषयो चौव्यो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भये न, यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से विषय ब्रह्म चार प्रकार का है, प्रकार का है शब्द डालो उसमें, वो पैराग्राफ की चौथी लाइन लास्ट, चार के बाद डालना है आपको, पेज नंबर 14 पर नीचे से जो बड़ा पैराग्राफ है ना उसमें चौथी लाइन, भेद से विषय चार प्रकार का है, फुल स्टॉप देना और आगे भी एक वाक्य डालना है, क्योंकि ऊपर भी लिखा है तथ्य जहन्य दवपमाने भन्नमाने सग विश्वसो वय सहिद कम्म विरहिद ओरालिय शरीर दव्वे सव विश्वसो चैसे घन लोगेन भागे हिदे तथ्य एक भागो जहन्नो ही दव्वम होदी। अब इसका नीचे उसका ट्रांसलेशन रह गया है वो मैं बता रही हूँ। विषय चार प्रकार का इतना लिखा, शोभा सुनो बराबर। अभी हमने ऐसा नीचे से तीसरी लाइन जो पढ़ी, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से विषय चार प्रकार का है, अब वहां एक वाक्य ऐड करना है, उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर यानी द्रव्य की मर्यादा कितने सूक्ष्म तक जानता है तो कहने पर, अभी इन्वर्टर में डालो, इन्वर्टेड कॉमा में डालो, मैं अभी वाक्य बता रही हूँ, उनमें ये नया वाक्य डालो, ऊपर जो है वो अलग है। जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर, प्रमाण कहने पर, और ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, प्राकृत के आधार से, ऊपर लिखा है जहन्न दव्व पमाणे भन्न माणे, भन्न माणे हुआ है, भन्न चाहिए ना पूरा न चाहिए, अभी लिखा उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर, आगे लिखो अपने विश्रसोपचय सहित, नहीं वो फिर दोबारा लेना है, एक मिनट जहन वो प्रमाण बनना, सग विश्व सोच सहित कम्म भी रही पूरा लिए शरीर दबे सब विश्व घने लोग मांगी थे। अब ऐसा है, अपने विश्रसोपचय सहित कर्म से रहित, ऊपर कर्म से रहित कहाँ है, हाँ? क्या लिखा है उसमें,
कर्म से रहित लिखा है,
आगे वही मैं अभी बता रही हूँ, ये वाक्य हमारे इसमें नहीं है, वो तो पहली जूनी कॉपी है, उसमें उसके बाद ये छपी तो इसमें नहीं आया है। मेरे पास जो कॉपी है उसमें ये नहीं लाइन,
मेरी कॉपी में भी नहीं है, हमने
हाँ हम लास्ट टाइम इसमें ऐड कर दिया था, हाँ उतना ही है, ये तृतीय आवृत्ति थी, वो बराबर है अरविंद भाई ने जो पढ़ा उनमें वो लाइन है, हमारे में ये लाइन नहीं है, सेकंड एडिशन में है, थर्ड एडिशन में गायब हो गए, अभी आगे के एडिशन में और क्या क्या गायब हो रहा है। हाँ देखो फिर से, उनमें जघन्य द्रव्य का प्रमाण कहने पर अपने विश्रसोपचय सहित कर्म से रहित व आगे उसका लिखा है ऊपर, वह ऊपर है अभी बाकी की लाइन, वो उपने नहीं वो अपने विश्रसोपचय सहित, अभी यहाँ सहित वाला लिया, औदारिक शरीर और वो तो है वहां पर, तो अभी आगे पूरा फिर हम सबका अर्थ बाद में बताएंगे। तो अपने विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर द्रव्य में यानी नौकर्म द्रव्य में घनलोक का भाग देने पर उसमें एक भाग प्रमाण जघन्य अवधि द्रव्य होता है। अब विश्वसोपचय किसको कहना मालूम है क्या, ब्रह्मा? हाँ देखो, जीव के साथ तीन शरीर है, कारमान शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, यानी वो ऑलरेडी उस रूप परिणत परमाणु है। अब उस एक एक परमाणु के साथ जीव द्रव्य राशि जो है उससे अनंत गुण द्रव्य एक एक परमाणु के साथ अपने स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण वहाँ उसके साथ बंधा हुआ है उसी प्रदेशों में, ऐसा नहीं कि उसके बाहर कुछ चिपक के बड़ी बात हुई, ऐसा नहीं है। तो जहाँ ये जो तेजस कारमान शरीर है उसी एरिया में उसका विश्रसोपचय भी है, यानी कारमान शरीर के परमाणु कितने अनंत हैं, वो प्रत्येक अनंत के साथ एक एक के साथ इतने अनंत अनंत और है। ऐसे तेजस का अपना अलग, औदारिक का अलग, औदारिक का अलग, वैक्रिक का अलग, सॉरी औदारिक तेजस कारमान की बात कर रहे हैं, औदारिक का अलग होगा, तेजस का अलग होगा, कारमान का अलग होगा। अब यहाँ क्या लिखना है, जघन्य द्रव्य का प्रमाण देखना है कैसा है,
जघन्य अवधि ज्ञान का,
अवधि ज्ञान का द्रव्य उसको जघन्य द्रव्य कह रहे हैं। तो अपने देखो, मैं जीव कांड में से पढ़ के बताती हूँ, अभी वो सोई है वहां पर, कल पढ़ेंगे इसको, जीव कांड में से कल पढ़ के बताएंगे आपको। तो हाँ, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विषय चार प्रकार का है, उनमें जघन्य द्रव्य का यानी द्रव्य जो है अवधि ज्ञान की जो द्रव्य की जघन्य मर्यादा, जघन्य अवधि ज्ञान का जघन्य कितना जानता है, कितने सूक्ष्म तक को जानता है, उसके लिए कहा अपने विश्रसोपचय सहित कर्म से रहित और अपने विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर द्रव्य में। अब ये कर्म को भूल जाओ, कर्म भी अपने विश्रसोपचय सहित है और औदारिक शरीर भी अपने विश्रसोपचय सहित है, तो यहाँ क्या करना है, विश्रसोपचय सहित वाला कर्म को हटा दो, केवल कितना लेना है, विश्रसोपचयित औदारिक शरीर लेना है। उस द्रव्य में घनलोक का भाग देने पर डिवाइडेड बाय लोक, हाँ उसमें एक भाग प्रमाण जघन्य अवधि द्रव्य होता है, ये उसका जघन्य द्रव्य ने उसका कितना सूक्ष्म होता है वो बात यहाँ बताइए।
तो इसमें लोक का भाग भी है, तो एक प्रदेश में स्थित जितने अनंत अनंत परमाणु है उसका ज्ञान ऐसे समझना,
केवल संख्या नहीं लेने उसकी, उसका जो वॉल्यूम देखना है।
हाँ, तो एक प्रदेश में जितने
कितने रोकता है,
कण लोक का भाग दिया, हम लोग का अपना शरीर है देखा, वो असंख्या प्रदेश की
शरीर के सारे परमाणु आ गए और उसमें उसके विश्रोसोपचय भी आ गए और भाग तो केवल एक लोक का दिया, कितने अनंत अनंत आ जाएगी उसके अंदर। अभी उसके भी बहुत ही अब विश्रोसोपचय सहित वगैरह की बात चर्चा चलेगी कल, हम यहाँ रुकते हैं, कल जीव कांड में से देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। पहले से निकाल के रखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत। मयंक भाई।